यह दूसरा तथ्य है, परमेश्वर ने अपने लोगों को व्यवस्था दी और उनके साथ वाचा बांधी, तदुपरांत वह उनसे कहता है, निर्गमन 24:4-11, तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इसराइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंभे भी बनवाए। तब उसने कई इसराइली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के लिए मेल बलि चढ़ाए, और मूसा ने आधा लहू लेकर कटोरों में रखा और आधा वेदी पर छिड़क दिया। तब वाचा की पुस्तक को लेकर लोगों को पढ़ सुनाया। उसे सुनकर उन्होंने कहा, जो कुछ यहोवा ने कहा है उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तब मूसा ने लहू को लेकर लोगों पर छिड़क दिया और उनसे कहा, देखो ये उस वाचा का लहू है जिसे यहोवा ने इन सब वचनों पर तुम्हारे साथ बांधी है। तब मूसा, हारून, नादाब, अबीहू और इसराइलियों के 70 पुरनिये उठ गए और इसराइल के परमेश्वर का दर्शन किया, और उसके चरणों के तले नीलमणि का चबूतरा सा कुछ था जो आकाश के तुल्य ही स्वच्छ था, और उसने इसराइलियों के प्रधानों पर हाथ न बढ़ाया। तब उन्होंने परमेश्वर का दर्शन किया और खाया पिया। परमेश्वर इसराइल के लिए स्वयं को समर्पित करता है। परमेश्वर की व्यवस्था का महत्व देखें, उसने 10 आज्ञाएं भी दी, निर्गमन 20:1-17। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया हूँ। तू मुझे छोड़ दूसरे को ईश्वर करके न मानना, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दणवत न करना, न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उसको निर्दोष ना ठहराएगा। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। 6 दिन तो तू परिश्रम करके अपना सब काम काज करना, परंतु 7वां दिन तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए विश्राम दिन है। उसमें ना तो तू किसी भांति का काम काज करना, और ना तेरा बेटा, ना तेरी बेटी, ना तेरा दास, ना तेरी दासी, ना तेरे पशु, ना कोई परदेसी जो तेरे फाटकों के भीतर हो, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया। इस कारण यहोवा ने विश्राम दिन को आशीष दी और उसको पवित्र ठहराया। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, न तो किसी के स्त्री का लालच करना, और न किसी के दास दासी व बैल गधे का, न किसी की वस्तु का लालच करना। परमेश्वर की दया को भी देखें, इसराइल व्यवस्था पालन में चूकता था, इसलिए परमेश्वर ने उनके पापों को ढांकने के लिए लहू का प्रबंध किया। निर्गमन 24 में मूसा ने प्रजा पर लहू छिड़का था जिसका अर्थ था परमेश्वर की वाचा के साथ बनना। अतः परमेश्वर के लोग लहू के आवरण में थे, और तब निर्गमन 24 में लिखा है कि वे उसकी महिमा को निहारते थे तथा उसकी उपस्थिति में उत्सव मनाते थे। परमेश्वर और मनुष्य का मिलन होता है जो केवल बलि के लहू से संभव है। परमेश्वर लहू के द्वारा अपनी संतान को बचाता है। इस कहानी का उद्देश्य क्या है? हमें समझने के लिए कि परमेश्वर कैसे अपनी संतान को लहू के द्वारा बचाता है, बाइबल में आरंभ से अंत तक आप देखेंगे कि बलि की व्यवस्था हमें समझाने के लिए थी कि परम अपने पुत्र को भेजेगा जिसके लहू बहाने के द्वारा वह हमें पाप और पीड़ा से बचाएगा। यहां मैं कुछ उदाहरण देता हूं। उत्पत्ति 22:9-14, जब वे उस स्थान को जिसे परमेश्वर ने उसको बताया था पहुंचे, तब अब्राहम ने वहां वेदी बनाकर लकड़ी को चुन चुन कर रखा और अपने पुत्र इसहाक को बांधकर वेदी पर की लकड़ी के ऊपर रख दिया। फिर अब्राहम ने हाथ बढ़ाकर छुरी को ले लिया कि अपने पुत्र को बलि करे। तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार कर कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, क्योंकि तू जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी निरख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूं कि तू परमेश्वर का भय मानता है। तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेड़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अतः अब्राहम ने जाके उस मेड़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। इब्रानियों 9:22, सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। रोमियो 5:9, अतः जबकि हम सब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। इफिसियों 1:7, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। इब्रानियों 13:12, इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। 1 पतरस 1:18-19, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। 1 यूहन्ना 1:7, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। मेमने का लहू परमेश्वर के क्रोध को शांत करता है। रोमियो 3:23-25, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं परंतु उसके अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है स्नेत में धर्मी ठहराए जाते हैं। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे। पाप के प्रति परमेश्वर का क्रोध प्रभु यीशु पर उंडेला जाएगा और परमेश्वर के मेमने का लहू परमेश्वर की संतान के पाप हर कर उन्हें बचाएगा। 1:29, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखा और कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। अनुग्रह के द्वारा क्रूस पर प्रभु यीशु की बलि परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरी और विश्वास के द्वारा वह बलि हमारे लिए प्रासंगिक हुई। वे सब जो प्रभु यीशु के लहू पाप हरने वाले परमेश्वर के मेमने में विश्वास करते हैं और जो उसके लहू के झंडे के नीचे आते हैं वे सब अपने ऊपर आने वाले परमेश्वर के दंड से बचाए जाकर परमेश्वर के संबंधों में लाए जाते हैं जहां हम उसकी महिमा को निहारते हैं और उसकी उपस्थिति में उत्सव उठाते हैं। यही तो प्रभु भोज है। मत्ती 26:26-29, जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो खाओ यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के पापों के लिए क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूँ कि दाख का यह रस उस दिन तक कभी ना पीऊँगा जब तक तुम्हारे साथ अपने पिता के राज्य में नया ना पीऊँ। फिर वे भजन गाकर जैतून पहाड़ पर गए। स्मरण रखें, प्रभु यीशु ने कष्ट उठाकर लहू बहाया कि हम अनंत पीड़ा से बचाए जाएं। लय व्यवस्था और गिनती, व्यवस्था देश कष्ट, परमेश्वर पवित्र है। मैंने लय व्यवस्था और गिनती को शीर्षक व्यवस्था देश कष्ट में एक साथ रखा है, परमेश्वर पवित्र है। लय व्यवस्था 11:44 के प्रसिद्ध कथन, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बने रहो क्योंकि मैं पवित्र हूँ, इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है अपने आप को अशुद्ध ना करना। इससे हम सीखते हैं कि हम परमेश्वर के साथ लापरवाही का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। यहाँ उन लोगों के उदाहरण हैं जिन्होंने परमेश्वर के साथ लापरवाही का व्यवहार किया। लेव्यवस्था 10:1-3, तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी भाग की जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे, और हारून चुप रहा। लय व्यवस्था 16:1-3, जब हारून के दो पुत्र यहोवा के सामने समीप जाकर मर गए उसके बाद यहोवा ने मूसा से बातें की और यहोवा ने मूसा से कहा, अपने भाई हारून से कहे कि संदूक के ऊपर के प्रायश्चित वाले ढक्कन के आगे बीच वाले पर्दे के अंदर पवित्र स्थान में हर जगह न प्रवेश करे, नहीं तो मर जाएगा, क्योंकि मैं प्रायश्चित वाले ढकने के ऊपर बादल में दिखाई दूंगा। जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेड़े को लेकर आए। हारून के पुत्र नादाब और अभिहू अनाधिकृत अग्नि परमेश्वर की उपस्थिति में लाने के कारण मारे गए थे। हमें परमेश्वर के समक्ष अत्यधिक दीनता से आना है। लेव व्यवस्था 16:29-31, तुम लोगों के लिए सदा की विधि होगी कि सातवें महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने जीव को दुख देना, और उस दिन कोई, चाहे वह तुम्हारे निज देश का हो, चाहे तुम्हारे बीच रहने वाला कोई परदेशी हो, कोई भी किसी प्रकार का काम काज न करे, क्योंकि उस दिन तुम्हें शुद्ध करने के लिए तुम्हारे निमित्त प्रायश्चित किया जाएगा और तुम अपने सब पापों से यहोवा के सम्मुख पवित्र ठहरोगे। यह तुम्हारे लिए परम विश्राम दिन ठहरे और तुम उस दिन अपने अपने जीव को दुख देना, यह सदा की विधि है। पाप घातक है, परमेश्वर पवित्र है और पाप घातक है। एक मनुष्य ने परमेश्वर के नाम की निंदा की और उसे पत्रवाह किया गया। लेव व्यवस्था 24:10-16, उन दिनों में किसी इसराइली स्त्री का बेटा जिसका पिता मिस्री पुरुष था इसराइलियों के बीच चला गया, और वह इसराइली स्त्री का बेटा और एक इसराइली पुरुष छावनी के बीच आपस में मारपीट करने लगे, और वह इसराइली स्त्री का बेटा यहोवा के नाम की निंदा करके शाप देने लगा। यह सुनकर लोग उसको मूसा के पास ले गए। उसकी माता का नाम शलोमीत था, जो दान के गोत्र के दिबरी की बेटी थी। उन्होंने उसको हवालात में बंद किया जिससे यहोवा की आज्ञा से इस बात पर विचार किया जाए। जब यहोवा ने मूसा से कहा, तुम लोग उस शाप देने वाले को छावनी से बाहर ले जाओ, और जितनों ने वह निंदा सुनी हो वे सब अपने अपने हाथ उसके सिर पर टेकें, तब सारी मंडली के लोग उसको पथरवाह करें। और तू इसराइलियों से कहे कि कोई क्यों ना हो जो अपने परमेश्वर को शाप दे, उसे अपने पाप का भार उठाना पड़ेगा। यहोवा के नाम की निंदा करने वाला निश्चय मार डाला जाए। सारी मंडली के लोग निश्चय उसको पथरवाह करें, चाहे देशी हो या परदेशी, चाहे कोई उस नाम की निंदा करे तो वह मार डाला जाए। पाप एक गंभीर बात है। लेव व्यवस्था और गिनती में सर्वत्र यह स्पष्ट है कि मनुष्य में पाप का रुझान बहुत शक्तिशाली है। गिनती 13-14 में इसराइल प्रतिज्ञा के देश के सामने कादेश बरने में खड़े हैं, परंतु गिनती 13:25-33 में लिखा है, 40 दिन के बाद वे उस देश का भेद लेकर लौट आए और पारान जंगल के कादेश नाम स्थान में मूसा और हारून और इसराइलियों की सारी मंडली के पास पहुंचे और उनको और सारी मंडली को संदेश दिया और उस देश के फल उनको दिखाए। उन्होंने मूसा से यह कहकर वर्णन किया, जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती हैं और उसकी उपज में से यही है, परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़वाले हैं और बहुत बड़े हैं, और फिर हमने वहाँ अनाक वंशियों को भी देखा है। दक्षिण देश में तो अमालेकी बसे हुए हैं और पहाड़ी देश में हित्ती, यबूसी और एमोरी बसे हुए हैं, और समुद्र के किनारे किनारे और यर्दन नदी के तट पर कनानी बसे हुए हैं। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के मनसा से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है। पर जो पुरुष उसके संग गए थे उन्होंने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है, क्योंकि वे हमसे बलवान हैं। और उन्होंने इसराइलियों के सामने उस देश की जिसका भेद उन्होंने लिया था यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे हैं वे सब के सब बड़े डील डॉल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को देखा, अर्थात नपीली जाति वाले अनाक वंशियों को देखा, और हम अपनी दृष्टि में तो उनके सामने टिड्डे के समान दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। और गिनती 14:1-4, तब सारी मंडली चिल्ला उठी और रात भर वे लोग रोते ही रहे, और सब इसराइली मूसा और हारून पर बुड़बुड़ाने लगे, और सारी मंडली उनसे कहने लगी, भला होता कि हम मिस्र ही में मर जाते या इस जंगल ही में मर जाते। यहोवा हमको उस देश में ले जाकर क्यों तलवार से मरवाना चाहता है? हमारी स्त्रियां और बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे। क्या हमारे लिए अच्छा नहीं कि हम मिस्र देश को लौट जाएं? फिर वे आपस में कहने लगे, आओ हम किसी को अपना प्रधान बना लें और मिस्र को लौट चले। देखिए मनुष्य में पाप का रुझान कैसा बलवंत है। परमेश्वर के लोगों ने उसकी भलाई का मान नहीं रखा, उन्होंने उसकी महानता पर संदेह किया। उन्होंने संभावित समस्याओं को परमेश्वर की प्रतिज्ञा से बड़ा समझा। उत्पत्ति 13:15 में परमेश्वर ने अब्राहम से उस स्थान की प्रतिज्ञा की थी और अब वे वहां पहुंच गए थे, परंतु उन्होंने कहा, हम परमेश्वर पर भरोसा कैसे करें? उत्पत्ति 13:14-18, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सबको मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरे वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांझ वृक्षों के बीच जो हिम्रोम में थे जाकर रहने लगा, और वहां भी यहोवा की एक वेदी बनाई। और उत्पत्ति 15:13-16 में तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उसके देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा, और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तू तो अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। परमेश्वर के लोगों ने उसके वचन का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा, हम दूसरा अगुवा चुनकर मिस्र लौट चलें। गिनती 14:4 और उसकी आशीषों से वंचित हुए। गिनती 14:35 में लिखा है, मैं यहोवा यह कह चुका हूँ कि इस बुरी मंडली के लोग जो मेरे विरुद्ध इकट्ठे हुए हैं इसी जंगल में मर मिटेंगे, और निसंदेह ऐसा ही करूँगा भी। मनुष्य में पाप का रुझान बहुत प्रबल है और पाप का दंड कठोर है। परमेश्वर हमारे आज के समय में हमें पाप की गंभीरता को फिर से समझने में सहायता करता है। कर्नेलिए प्लांडिंगा ने कहा, नॉट द वे वे सपोज टू बी। पाप का बोध, अवज्ञा का गहन बोध और पाप का दुखद अंगीकार हमारी परछाई था। विश्वासी पाप से घृणा करते थे, वे पाप से डरते थे, वे उससे दूर भागते थे, वे उसके कारण विलाप करते थे। हमारे पितर अपने पापों के कारण दुखी थे। यदि कोई क्रोध करता था तो सोचता था कि प्रभु भोज लेना उसके लिए उचित है। एक स्त्री जो वर्षों अपनी अधिक सुंदर एवं बुद्धिमान बहन से घृणा करती थी सोचती थी कि इस कारण वह उद्धार से वंचित ना हो जाए। अब यह मानसिकता लगभग समाप्त हो गई है। आज तुमने पाप किया है, मुस्कुराहट और भीतरी उपहास के संकेत के साथ कहा जाता है। एक समय वह भी था जब इस बात में मनुष्य को हिला देने की शक्ति थी, बलि की आवश्यकता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम पाप की भयानकता को समझें, चाहे हमारी समझ में वह कितना भी छोटा हो। लय व्यवस्था और गिनती से हम पर स्पष्ट किया जा रहा है कि परमेश्वर पवित्र है, पाप घातक है, अतः बलि की फिर से आवश्यकता है। लय व्यवस्था के 16 अध्याय इसी संदर्भ में है। लय व्यवस्था 17:11, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों की वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। यह पुराने नियम में परमेश्वर की व्यवस्था थी कि वर्ष में एक बार बलि चढ़ाई जाए। वह दिन प्रायश्चित कहलाता था। याजक पवित्र स्थान में जाता था। लय व्यवस्था 16:3-10, जब हारून पवित्र स्थान में प्रवेश करे तब इस रीति से प्रवेश करे, अर्थात पाप बलि के लिए एक बछड़े को और होम बलि के लिए एक मेड़े को लेकर आए। वह सनी के कपड़े का पवित्र अंगरखा और अपने तन पर सनी के कपड़े की जांघिया पहने हुए और सनी के कपड़े का कटीबंध और सनी के कपड़े की पगड़ी भी बांधे हुए प्रवेश करे। ये पवित्र वस्त्र हैं और ये जल से स्नान करके इन्हें पहने। फिर वह इसराइलियों की मंडली के पास से पाप बलि के लिए 2 बकरे और होम बलि के लिए एक मेढ़ा ले, और हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा चढ़ाकर अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और उन दोनों बकरों को लेकर मिलाप वाले तंबू के द्वार पर यहोवा के सामने खड़ा करे, और हारून दोनों बकरों पर चिट्ठियाँ डाले, एक चिट्ठी यहोवा के लिए और दूसरी अजाजेल के लिए हो, और जिस बकरे पर यहोवा के नाम की चिट्ठी निकले उसको हारून पाप बलि के लिए चढ़ाए, परंतु जिस बकरे पर अजाजेल के लिए चिट्ठी निकले वह यहोवा के सामने जीवित खड़ा किया जाए कि उससे प्रायश्चित किया जाए, और वह अजाजेल के लिए जंगल में छोड़ा जाए। याजक एक निष्कलंक पशु की बलि चढ़ाता था। लय व्यवस्था 16:11-17, हारून उस पाप बलि के बछड़े को जो उसी के लिए होगा समीप ले आए और उसको बलिदान करके अपने और अपने घराने के लिए प्रायश्चित करे, और जो वेदी यहोवा के सम्मुख है उस पर के जलते हुए कोयले से भरे हुए धूपदान को लेकर और अपनी दोनों मुट्ठियों को कूटे हुए सुगंधित धूप से भरकर बीच वाले पर्दे के भीतर ले आकर उस धूप को यहोवा के सम्मुख आग में डाले, जिससे धूप का धुआं साक्षी पत्र के ऊपर के प्रायश्चित के ढकने के ऊपर छा जाए, नहीं तो वह मर जाएगा। तब वह बछड़े के लहू में से कुछ लेकर पूर्व की ओर प्रायश्चित के ढकने के ऊपर अपनी उंगली से छिड़के और फिर उस लहू में से कुछ उंगली के द्वारा उस ढकने के सामने भी 7 बार छिड़क दे। फिर वह उस पाप बलि के बकरे को, जो साधारण जनता के लिए होगा, बलिदान करके उस लहू को बीच वाले पर्दे के भीतर ले आए और जिस प्रकार बछड़े के लहू से उसने किया था, ठीक वैसा ही वह बकरे के लहू से भी करे, अर्थात उसको प्रायश्चित के ढकने के ऊपर और उसके सामने छिड़के। और वह इसराइलियों की भांति भांति की अशुद्धता और अपराधों और उनके सब पापों के कारण पवित्र स्थान के लिए प्रायश्चित करे और मिलाप वाला तंबू, जो उनके संग उनकी भांति भांति की अशुद्धता के बीच रहता है, उसके लिए भी वह वैसा ही करें। और जब हारून प्रायश्चित करने के लिए पवित्र स्थान में प्रवेश करे, तब से जब तक वह अपने और अपने घराने और इसराइल की सारी मंडली के लिए प्रायश्चित करके बाहर न निकले, तब तक कोई मनुष्य मिलाप वाले तंबू में ना रहे। वह उस पशु का लहू वेदी पर छिड़कता था, जिसका अर्थ था कि पाप और मृत्यु का दंड चुकाया जा चुका है। परमेश्वर इस प्रतिस्थापन बलि से संतुष्ट हो जाता था, जैसा हमने निर्गमन 12 में देखा था। लय व्यवस्था 16:20-22 में यूं लिखा है, जब वह पवित्र स्थान और मिलाप वाले तंबू और वेदी के लिए प्रायश्चित कर चुके, तब जीवित बकरे को आग मिले आए और हारून अपने दोनों हाथों को जीवित बकरे पर रखकर इसराइलियों के सब अधर्म के कामों और उनके सब अपराधों, अर्थात उनके सारे पापों को अंगीकार करे और उनको बकरे के सिर पर धरकर उसको किसी मनुष्य के हाथ, जो इस काम के लिए तैयार हो, जंगल में भेज के छुड़वा दे। वह बकरा उनके सब अधर्म के कामों को अपने ऊपर लादे हुए किसी निर्जन स्थान में उठा ले जाएगा, इसलिए वह मनुष्य उस बकरे को जंगल में छोड़ दे। इसके बाद याजक एक बकरा लेकर उसके सिर पर इसराइल के पाप मलकर उसे जंगल में छुड़वा देता था कि फिर कभी वह दिखाई ना दे। यह बलि प्रतिवर्ष दोहराना आवश्यक थी। लय व्यवस्था 16:34, और वह विधि तुम्हारे लिए सदा की विधि होगी कि इसराइलियों के लिए प्रतिवर्ष एक बार तुम्हारे सारे पापों के लिए प्रायश्चित किया जाए। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार, जो उसने मूसा से की थी, हारून ने किया। ये प्रतिवर्ष का स्मारक बन गया था, जिसे इब्रानियों का लेखक इस प्रकार व्यक्त करता है, इब्रानियों 10:1-4, क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता? इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी ना ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह नए नियम में परमेश्वर के प्रावधान का मंच तैयार करता है, प्रभु यीशु की मृत्यु द्वारा सदा की बलि। इब्रानियों 10:10, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। इनमें अनेक समानताएं हैं। एक याजक स्वर्गीय पवित्र स्थान में प्रवेश करता है। प्रभु यीशु, इब्रानियों 9:23-24 में लिखा है, इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं आप इनसे उत्तम बलिदानों द्वारा शुद्ध की जाती हैं, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह बलि किसी पशु की नहीं, निष्पाप मनुष्य प्रभु यीशु की थी, इब्रानियों 9:11-14। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। परमेश्वर, जो हमारे पापों का लेखा रखता है, उसके पुत्र प्रभु यीशु की बलि से संतुष्ट हुआ। यह सदाकालीन बलि है। इब्रानियों 10:11-14, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैर ही उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें, जो पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। इस बलि का परिणाम देखें, सब पापों से मुक्ति। और इब्रानियों 10:17 में वह कहता है, मैं उनके पाप और अपराध कभी स्मरण ना रखूंगा। यीशु योग्य है, इससे न चूकें। पापों के कारण कष्ट आते हैं, हमें एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है कि मुक्ति दिलाए, और यीशु इस योग्य है। यीशु ऐसा महायाजक है जो हमें सदैव परमेश्वर के समक्ष प्रस्तुत करता रहता है। इब्रानियों 7:23-25, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगान युग रहता है। इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। वह बलि का मेमना है जो अनंत काल तक हम पर राज करेगा। प्रकाशित वाक्य 5:5-10। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह है जो दाऊद का मूल है। उस पुस्तक को खोल लें और उसकी सातों मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थीं। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। उसने आकर उसके दाहिने हाथ से जो सिंहासन पर बैठा था वह पुस्तक ले ली। जब उसने पुस्तक ले ली तो वे 4 प्राणी और 2400 प्राचीन उस मेमने के सामने गिर पड़े। उनमें से हर एक के हाथ में वीणा और धूप, जो पवित्र लोगों की प्रार्थनाएं हैं, से भरे हुए सोने के कटोरे थे। वे नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने बद होकर अपने लहू से हर एक कुल और भाषा और लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया है, और वे पृथ्वी पर राज्य करते हैं। वह हमें परमेश्वर के समक्ष सदैव उपस्थित करेगा और हम पर अनंतकालीन राज्य करेगा। प्रकाशित वाक्य 5। व्यवस्था विवरण। परमेश्वर अपने लोगों को कष्ट देता है। पुराना नियम, आशीषें और श्राप। अंतिम व्यवस्था विवरण। परमेश्वर अपने लोगों को कष्ट देता है। यह बड़ी रोचक बात है। पुराने नियम में कष्टों का कारण आशीष और श्राप है। व्यवस्था विवरण प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करने से पूर्व इसराइल के समक्ष परमेश्वर की व्यवस्था का पुनरावलोकन है। आज्ञाकारिता के निमित्त परमेश्वर आशीषों की प्रतिज्ञा करता है। व्यवस्था विवरण 28:1-6, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। इसके तुरंत बाद ही परमेश्वर अवज्ञा का श्राप देता है। व्यवस्था विवरण 28:58-63, यदि तू इन व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में जो इस पुस्तक में लिखे हैं चौकसी करके उस आदरणीय और भययोग नाम का जो यहोवा तेरे परमेश्वर का है भय न माने, तो यहोवा तुझको और तेरे वंश को अनोखे अनोखे दंड देगा। वे दुष्ट और बहुत दिन रहने वाले रोग और भारी भारी दंड होंगे, और वह मिस्र के उन सब रोगों को फिर तेरे ऊपर लगा देगा जिनसे तू भय खाता था, और वे तुझमें लगे रहेंगे। और जितने रोग आदि दंड इस व्यवस्था के पुस्तक में नहीं लिखे हैं, उन सबों को भी यहोवा तुझको यहाँ तक लगा देगा कि तेरा सत्यानाश हो जाएगा, और तू जो अपने परमेश्वर यहोवा की ना मानेगा, इस कारण आकाश के तारों के समान अनगिनत होने के बदले तुझ में से थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। और जैसे अब यहोवा को तुम्हारी भलाई और बढ़ती करने से हर्ष होता है, वैसे ही तब उसको तुम्हारा नाश वरन सत्यानाश करने से हर्ष होगा, और जिस भूमि के अधिकारी होने को तुम जा रहे हो उस पर से तुम उखाड़े जाओगे। परमेश्वर कहता है कि अवज्ञा का फल कष्ट और पीड़ा होगा। ये अनेक प्रकार से शेष पुराने नियम की कहानी है। परमेश्वर के लोगों ने बार बार परमेश्वर की आज्ञाएं तोड़ी। नया नियम, क्रूस और श्राप। अब हम नए नियम तक आते हैं जहां क्रूस और श्राप है। गलातियों 3:10-14, पौलुस ने उन लोगों के लिए लिखा था जो सोचते थे कि वे परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करके परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त कर लेंगे। अतः वह कहता है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब श्राप के अधीन हैं, क्योंकि लिखा है, जो कोई व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कुछ संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वो उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हम परमेश्वर की व्यवस्था के श्राप के अधीन हैं। क्रूस पर प्रभु यीशु परमेश्वर के न्याय के श्राप के अधीन था। गलातियों अध्याय 3 में पौलुस कहता है कि प्रभु यीशु हमारे लिए श्राप बना था, और वह व्यवस्था विवरण 21:23 का संदर्भ देता है, तो वह शव रात को वृक्ष पर टंगाना रहे, अवश्य उसी दिन उसे मिट्टी देना, क्योंकि जो लटकाया गया हो वह परमेश्वर की ओर से शापित ठहरता है। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके देता है उसकी भूमि को अशुद्ध ना करना। हमारे ऊपर से परमेश्वर का श्राप उसने अपने ऊपर ले लिया, जिसके परिणाम स्वरूप हम परमेश्वर के अनुग्रह की पकड़ में हैं। अब हमारे पास 3 चुनाव हैं। पहला, हम श्राप को अनदेखा करके सोचें कि हम परमेश्वर की दृष्टि में उचित हैं। दूसरा, श्राप से बचने के लिए कर्म करें, धार्मिक नियमों और संस्कारों को पूरा करके सोचें कि हम परमेश्वर के अनुग्रह पात्र हो जाएं। लोग कभी कभी कहते हैं कि यह प्रार्थना करो, आराधना में जाओ, अच्छे मनुष्य बनो तो आपका उद्धार होगा, परंतु ये दोनों चुनाव विनाशकारी हैं। तीसरा चुनाव क्या है? श्राप को गले लगाओ, अर्थात अवज्ञा को दिल से स्वीकार करो और क्रूस के पास भागो। प्रभु यीशु में विश्वास करके उसकी आशीषों का अनुभव करो। अपने न्याय में परमेश्वर अपने लोगों को पाप के लिए कष्ट देता है, और दया के अद्भुत कार्य द्वारा वह अपने पुत्र को कष्ट देता है कि हमारे पाप हर ले। ऐतिहासिक पुस्तकें, यहोशू और न्यायियों, भय और न्याय। भय के मध्य प्रबोधन, यहोशू, न्यायियों, रूत, पहला और दूसरा शमूएल, पहला और दूसरा राजा, पहला और दूसरा इतिहास, एज़रा, नहेमिया और एस्तर। ये पुस्तकें हमें कष्ट वहन के विषय क्या सिखाती हैं। यहोशू और न्यायियों में भय और न्याय का चित्रण देखें। यहोशू की पुस्तक के आरंभ से ही भय के मध्य प्रबोधन है। यहोशू 1:1-9 में पढ़ें, यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक यहोशू से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यर्दन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको, अर्थात इसराइलियों को, देता हूँ, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि तू हियाव बांधकर और बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिनी ओर मुड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। यहोशू इसराइल को प्रतिज्ञा के देश में ले जाने की तैयारी कर रहा है, और परमेश्वर उसके भय में उससे कहता है कि वह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में भरोसा रखे। व्यवस्था विवरण 11:24-25, जिस जिस स्थान पर तुम्हारे पांव के तलवे पड़े वे सब तुम्हारे ही हो जाएंगे, अर्थात जंगल से लबानोन तक और परात नामक महानद से लेकर पश्चिम के समुद्र तक तुम्हारी सीमा होगी। तुम्हारे सामने कोई भी खड़ा न रह सकेगा, क्योंकि जितनी भूमि पर तुम्हारे पांव पड़ेंगे उस सब पर रहने वालों के मन में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुम्हारे कारण उनमें डर और थरथराहट उत्पन्न कर देगा। परमेश्वर ने उन्हें संपूर्ण देश दे दिया था, उसकी उसने प्रतिज्ञा की थी, अतः परमेश्वर ने कहा, ले लो। परमेश्वर की आज्ञाओं पर ध्यान दें। यहोशू 1, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए। परमेश्वर का वचन हमारे चित्त में बस जाना चाहिए। हमारे मुंह में परमेश्वर का वचन हो। परमेश्वर की उपस्थिति पर निर्भर करो। मुझे यहोशू अध्याय 1 बहुत अच्छा लगता है। सांसारिक दृष्टिकोण से तो यहोशू पर मौन का भय छा गया था, परंतु परमेश्वर के साथ उसे विजय का पूर्ण विश्वास था, मत डर। परमेश्वर की महिमा के लिए जीना, यहोशू 24:14-15। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार और मिस्र में करते थे उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे एमोरियों के देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित करूंगा। यहोशू की पुस्तक का एक उद्देश्य यह भी है कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में घटनाओं को व्यवस्थित करता है कि अपनी महिमा प्रकट करे। परमेश्वर कभी कभी अपने लोगों को कठिन परिस्थितियों में डाल देता है जिसके कारण भय उत्पन्न होता है, और यह वह इसलिए करता है कि अपने सामर्थ्य का, अपनी प्रतिज्ञाओं के प्रति अपनी विश्वास योग्यता और अपनी सर्वोच्च महिमा का प्रदर्शन करे। न्याय का प्रदर्शन। अतः हम भय में प्रबोधन और न्याय का प्रदर्शन देखते हैं। यहोशू और न्यायियों की पुस्तकें दोनों ही स्पष्ट करती हैं कि परमेश्वर मनुष्य का न्याय करता है। मैं यहोशू 6:7 से आकान की कहानी यहाँ रखता हूँ। उसने युद्ध से लाई गई लूट का सामान घर में रख लिया था, जबकि परमेश्वर ने मना किया था, और परिणाम स्वरूप समुदाय को कष्ट पहुंचा। एक मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर के सब लोगों को दंड मिला। यहोशू 6:18-19। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो, ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहराकर बाद में उसी अर्पण की वस्तुओं में से कुछ ले लो, और इस प्रकार इसराइली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। सब चांदी, सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं और उसी के भंडार में रखे जाएं। और यहोशू 7:1 में लिखा है, परंतु इसराइलियों ने अर्पण की वस्तु के विषय में विश्वासघात किया, अर्थात यहूदा के गोत्र का आकान जो जेरा वंशी जब्दी का पोता और कर्मी का पुत्र था, उसने अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लिया। इस कारण यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़क उठा। आकान के पाप का दंड सबको मिला। यहोशू 7:2-13। यहोशू ने यरियो से ए नाम नगर के पास, जो बेतावन से लगा हुआ बेतेल की पूर्व की ओर है, कुछ पुरुषों को यह कहकर भेजा, जाकर देश का भेद ले आओ। और उन पुरुषों ने जाकर ए का भेद लिया, और उन्होंने यहोशू के पास लौट कर कहा, सब लोग वहां ना जाएं, क्योंकि 2,000 या 3,000 पुरुष जाकर ए को जीत सकते हैं, और सब लोगों को वहां जाने का कष्ट ना दे, क्योंकि वे लोग थोड़े ही हैं। इसलिए कोई 3,000 पुरुष वहां गए, परंतु ए के रहने वालों के सामने से भाग आए। तब ए के रहने वालों ने उनमें से कोई 36 पुरुष मार डाले, और अपने फाटक से शबारीम तक उनका पीछा करके उतराई में उनको मारते गए। तब लोगों का मन पिघल कर जल सा बन गया। जब यहोशू ने अपने वस्त्र फाड़े और वह और इसराइली वृद्ध लोग यहोवा के संदूक के सामने मुंह के बल गिरकर पृथ्वी पर सांझ तक पड़े रहे, और उन्होंने अपने अपने सिर पर धूल डाली, और यहोशू ने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तू अपनी इस प्रजा को यरदन पार क्यों ले आया? क्या हमें एमोरियों के वश में करके नष्ट करने के लिए ले आया? भला होता कि हम संतोष करके यरदन के उस पार रह जाते। हाय प्रभु, मैं क्या कहूँ जब इसराइलियों ने अपने शत्रुओं को पीठ दिखाई है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे। फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा? यहोवा ने यहोशू से कहा, उठ खड़ा हो जा। तू क्यों इस भांति मुंह के बल पृथ्वी पर पड़ा है? इसराइलियों ने पाप किया है, और जो वाचा मैंने उनसे अपने साथ बंधाई थी उनको उन्होंने तोड़ दिया है। उन्होंने अर्पण की वस्तुओं में से ले लिया, वरन चोरी भी की और छल करके उसको अपने सामान में रख लिया है। इस कारण इसराइली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं। और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। उठ प्रजा के लोगों को पवित्र कर, उनसे कहे सवेरे तक अपने अपने को पवित्र कर रखो, क्योंकि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, हे इसराइल, तेरे मध्य में अर्पण की वस्तु है, इसलिए जब तक तू अर्पण की वस्तु को अपने मध्य में से दूर ना करे तब तक तू अपने शत्रुओं के सामने खड़ा ना रह सकेगा। आकान के पाप को परिणाम स्वरूप। एक मनुष्य के पाप का परिणाम यह हुआ कि इसराइल युद्ध हार गया, और एक छोटी सी सेना ने उन इसराइली सैनिकों को मार गिराया। एक मनुष्य के पाप के कारण हम परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित हो जाते हैं। इसके अनेक उदाहरण हैं। व्यवस्था विवरण 31:23। और उसने नून के पुत्र यहोशू को यह आज्ञा दी हियावबान और दृढ़ हो, क्योंकि इसराइलियों को उस देश में जिसे उन्हें देने को मैंने उनसे शपथ खाई है तू पहुंचाएगा और मैं आप तेरे संग रहूंगा। यहोशू 1:17। जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे वैसे ही तेरे भी माना करेंगे, इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसा मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी रहे। कोई क्यों ना हो जो तेरे विरुद्ध बलवा करे और जितनी आज्ञाएं तू दे उनको ना माने तो वह मार डाला जाएगा, परंतु तू दृढ़ और हियाव बांधे रहे। यहोशू 3:7। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इसराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही तेरे संग भी हूँ। यहोशू 6:27। और यहोवा यहोशू के संग रहा और यहोशू की कीर्ति उस सारे देश में फैल गई। परमेश्वर ने बार बार कहा है मैं तेरे साथ होऊंगा, परंतु यहोशू 7:12 में वह कहता है, इस कारण इसराइली अपने शत्रुओं के सामने खड़े नहीं रह सकते, वे अपने शत्रुओं को पीठ दिखाते हैं, इसलिए कि वे आप अर्पण की वस्तु बन गए हैं, और यदि तुम अपने मध्य में से अर्पण की वस्तु को सत्यानाश ना कर डालोगे तो मैं आगे को तुम्हारे संग नहीं रहूंगा। एक मनुष्य का पाप परमेश्वर की उपस्थिति से वंचित कर देता है, एक मनुष्य का पाप परमेश्वर की महिमा का अपमान करवाता है। यहोशू 7:9 में लिखा है, क्योंकि कनानी वरन इस देश के सब निवासी यह सुनकर हमको घेर लेंगे और हमारा नाम पृथ्वी पर से मिटा डालेंगे, फिर तू अपने बड़े नाम के लिए क्या करेगा। एक मनुष्य के पाप के कारण परमेश्वर का धर्मी क्रोध तुरंत भड़क उठता है। आकान के पूरे परिवार को पथरवाह किया गया। यहोशू 7:22-26। तब यहोशू ने दूत भेजे और उस डेरे में दौड़े गए और क्या देखा कि वे वस्तुएं उसके डेरे में गड़ी हैं और सब के नीचे चांदी है। उनको उन्होंने डेरे में से निकालकर यहोशू और सब इसराइलियों के पास लाकर यहोवा के सामने रख दिया। तब सब इसराइलियों समेत यहोशू जेरावंशी आकान को और उस चांदी और ओढ़ने और सोने की ईंट को और उसके बेटे बेटियों को और उसके बैलों गधों और भेड़ बकरियों को और उसके डेरे को अर्थात जो कुछ उसका था उन सबको आकोर नाम तराई में ले गया। तब यहोशू ने उससे कहा, तूने हमें क्यों कष्ट दिया है, आज के दिन यहोवा तुझी को कष्ट देगा। तब सब इसराइलियों ने उसको पथरवाह किया और उनको आग में डालकर जलाया और उनके ऊपर पत्थर डाल दिए और उन्होंने उसके ऊपर पत्थरों का ढेर लगा दिया जो आज तक बना है। तब यहोवा का भड़का हुआ कोप शांत हो गया, इस कारण उस स्थान का नाम आज तक आकोर तराई पड़ा है। परमेश्वर मनुष्य को दंड देता है, एक मनुष्य के पाप के कारण आने वाले कष्ट को कम ना आंकें। परमेश्वर अन्य जातियों को दंड देता है, परमेश्वर ने अन्य जातियों को श्राप दिया। व्यवस्था विवरण 20:16-18। परंतु जो नगर इन लोगों के हैं जिनका अधिकारी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ठहराने पर है, उनमें से किसी प्राणी को जीवित ना रख छोड़ना, परंतु उनको अवश्य सत्यानाश करना, अर्थात हित्तियों एमोरियों कनानियों परिज्जियों हिव्वियों और यबूसियों को, जैसे कि तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे आज्ञा दी है। ऐसा ना हो कि जितने घिनौने काम भी अपने देवताओं की सेवा में करते आए हैं वैसा ही करना तुम्हें भी सिखाएं और तुम अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करने लगो। इन जातियों को देखकर हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कुछ समय तो पापियों के साथ धीरज धरता है। उत्पत्ति 15:13-16 में हम उसकी इस प्रतिज्ञा को देखते हैं। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे उसको मैं दंड दूंगा और उसके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। तो तू अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा, तुझे पूरे बुढ़ापे में मिट्टी दी जाएगी, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। परमेश्वर नियत समय आने तक अन्य जातियों के दंड को रोके हुए था। परमेश्वर धीरजवंत है। हिजकेल 33:11। इसलिए तो उनसे यह कहे, परमेश्वर यहोवा की वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इसराइल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। परमेश्वर उन्हें मन फिराव के लिए पुकारता है कि वे जीवित रहें, परंतु जब वे सुनते नहीं तो समय आने पर परमेश्वर पापियों को दंड देता है, जैसे हमने सदोम और अमोरा के बारे में पढ़ा। उत्पत्ति 18:27-33। यहोशू और न्यायियों की पुस्तक में सर्वत्र परमेश्वर अन्य जातियों को दंड देता है। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूँ, तो भी मैंने इतनी ढिठाई की कि तुझसे बातें करूँ, कदाचित उन 50 धर्मियों से 5 घट जाएं, तो क्या तू 5 ही के घटने के कारण उस सारे नगर का नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले तो भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने उससे यह भी कहा, कदाचित वहां 40 मिले। उसने कहा, तो मैं 40 के कारण भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध ना कर, तो मैं कुछ और कहूं, कदाचित वहां 30 मिले। उसने कहा, यदि मुझे वहां 30 भी मिले तो भी ऐसा ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु, सुन, मैंने इतनी ढिठाई तो की है कि तुझसे बातें करूं, कदाचित उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध न कर, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। जब यहोवा अब्राहम से बातें कर चुका तब चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। परमेश्वर अपने लोगों को भी अवज्ञा का दंड देता है। न्यायियों की पुस्तक में इसराइल की अवज्ञा और उसके परिणाम स्वरूप दंड के अनेक उदाहरण हैं। न्यायियों 1:28-33, परंतु जब इसराइली सामर्थी हुए तब उन्होंने कनानियों से बेगारी ली, परंतु उन्हें पूरी रीति से ना निकाला। एप्रैम ने गेजेर में रहने वाले कनानियों को ना निकाला, इसलिए कनानी गेजेर में उनके बीच में बसे रहे। जबूलून ने कित्रोन और नहलोल के निवासियों को ना निकाला, इसलिए कनानी उनके बीच में बसे रहे और उनके वश में हो गए। आशेर ने अक्को, सीदोन, एहलाब, अकजीब, हेलवा, अपीक और रहोब के निवासियों को ना निकाला, इसलिए आशेरी लोग देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, क्योंकि उन्होंने उनको ना निकाला था। नप्ताली ने बेतशेमेश और बेतनात के निवासियों को ना निकाला, परंतु देश के निवासी कनानियों के बीच में बस गए, तो भी बेतशेमेश और बेतनात के लोग उनके वश में हो गए। और न्यायियों 2:10-23 में भी, और इस पीढ़ी के सब लोग भी अपने अपने पितरों में मिल गए। तब उसके बाद जो दूसरी पीढ़ी हुई उसके लोग ना तो यहोवा को जानते थे और ना उस काम को जो उसने इसराइल के लिए किया था। इसलिए इसराइली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वह अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को, जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था, त्याग कर पराए देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। वे यहोवा को त्याग करके बाल देवताओं और अश्तोरेत देवियों की उपासना करने लगे। इसलिए यहोवा का कोप इसराइलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर अपने शत्रुओं के सामने ठहर ना सके। जहां कहीं वे बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा था। वरन यहोवा ने शपथ खाई थी, इस प्रकार से वे बड़े संकट में पड़ गए। तो भी यहोवा उनके लिए न्यायी ठहराता था जो उन्हें लूटने वाले के हाथ से छुड़ाते थे, परंतु वे अपने न्यायियों की भी नहीं मानते थे, वरन व्यभिचारण के समान पराये देवताओं के पीछे चलते और उन्हें दंडवत करते थे। उनके पूर्वज जो यहोवा की आज्ञाएं मानते थे, उनकी उस लीक को उन्होंने शीघ्र ही तोड़ दिया और उनके अनुसार ना किया। जब जब यहोवा उनके लिए न्याय को ठहराता, तब तब वह उस न्याय के संग रहकर उसके जीवन भर उन्हें शत्रुओं के हाथ से छुड़ाता था, क्योंकि यहोवा उनका करहाना जो अंधेर और उपद्रव करने वालों के कारण होता था सुनकर दुखी था। परंतु जब न्यायी मर जाता तब वे फिर पराए देवताओं के पीछे चलकर उनकी उपासना करते और उन्हें दंडवत करके अपने पुरखाओं से अधिक बिगड़ जाते थे और अपने बुरे कामों और हठीले चाल को नहीं छोड़ते थे। इसलिए यहोवा का कोप इसराइल पर भड़क उठा और उसने कहा, इस जाति ने उस वाचा को जो मैंने उनके पूर्वजों से बांधी थी तोड़ दिया और मेरी बात नहीं मानी। इस कारण जिन जातियों को यहोशू मरते समय छोड़ गया है, उनमें से मैं अब किसी को उनके सामने से ना निकालूंगा, जिससे उनके द्वारा मैं इसराइलियों की परीक्षा करूं कि जैसे उनके पूर्वज मेरे मार्ग पर चलते थे वैसे ये भी चलेंगे कि नहीं। इसलिए यहोवा ने उन जातियों को एकाएक ना निकाला वरन रहने दिया, और उसने उन्हें यहोशू के हाथ में भी उनको ना सौंपा था। न्यायियों की पूरी पुस्तक में इसराइल के द्वारा बार बार आज्ञा उल्लंघन का उल्लेख है, जिसके कारण उन पर विपत्ति आती थी और फिर वे पश्चाताप करते थे। वे अपने पापों से मन फिराते और फिर परमेश्वर उन्हें क्षमा कर देता था और उनका पुनरुद्धार करता था, उन्हें विश्राम प्रदान करता था, परंतु वे फिर वही काम करते थे। यहोशू 3:7-11, तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इसराइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान लें कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूं। और तू वाचा के संदूक के उठाने वाले याजकों को यह आज्ञा दे, जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो तब यरदन में खड़े रहना। तब यहोशू ने इसराइलियों से कहा, पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोशू कहने लगा, इससे तुम जान लोगे कि जीवित परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है और वह तुम्हारे सामने से निसंदेह कनानियों, हित्तियों, हिव्वियों, परिज्जियों, गिरगाशियों, एमोरियों और यबूसियों को उनके देश में से निकाल देगा। सुनो, पृथ्वी भर के प्रभु की वाचा का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने पर है। समस्या यहाँ यह है कि परमेश्वर के लोग मनुष्य की भ्रष्ट दशा, पापी दशा का प्रदर्शन कर रहे थे। उनके पाप का कारण था निर्लज मूर्ति पूजा। यहोशू 10:6, तब गिबोन के निवासियों ने गिलगाल की छावनी में यहोशू के पास यूं कहला भेजा, अपने दासों की ओर से तू अपना हाथ न हटाना, शीघ्र हमारे पास आकर हमें बचा ले और हमारी सहायता कर, क्योंकि पहाड़ पर रहने वाले एमोरियों के सब राजा हमारे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं। उनके पाप मूर्ति पूजा का परिणाम था अनैतिकता। बाइबल में इसराइल के महादुष्ट पार्श्विक कार्य न्यायियों की पुस्तक में व्यक्त न्यायियों 19:22-30, वे आनंद कर रहे थे कि नगर के लुच्चों ने घर को घेर लिया और द्वार को खटखटा खटखटा कर घर के उस बूढ़े स्वामी से कहने लगे, जो पुरुष तेरे घर में आया है उसे बाहर ले आ कि हम उससे भोग करें। घर का स्वामी उनके पास बाहर जाकर उनसे कहने लगा, नहीं नहीं हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई ना करो। यह पुरुष जो मेरे घर पर आया है, इससे ऐसी मूर्ता का काम मत करो। देखो, यहाँ मेरी कुमारी बेटी है और इस पुरुष की रखेल भी है, उनको मैं बाहर ले आऊँगा और उनका पत पानी तो ले लो और उनसे जो चाहो सो करो, परंतु इस पुरुष से ऐसी मूर्ता का काम मत करो। परंतु उन मनुष्यों ने उसकी ना मानी। तब उस पुरुष ने अपनी रखेल को पकड़कर उनके पास बाहर कर दिया और उन्होंने उससे कुकर्म किया और रात भर क्या भोर तक उससे लीला क्रीड़ा करते रहे और पौ फटते ही उसे छोड़ दिया। तब वह स्त्री पौ फटते ही जाके उस मनुष्य के घर के द्वार पर जिसमें उसका पति था गिर गई और उजियाले के होने तक वहीं पड़ी रही। सवेरे जब उसका पति उठ घर का द्वार खोल और अपना मार्ग लेने को बाहर गया तो क्या देखा कि मेरी रखेल घर के द्वार के पास डेवड़ी पर हाथ फैलाए हुए पड़ी है। उसने उससे कहा, उठ हम चलें। जब कोई उत्तर ना मिला तब वो उसको गधे पर लादकर अपने स्थान को गया। जब वो अपने घर पहुंचा तब छुरी ले रखेल को अंग अंग करके काटा और उसे 12 टुकड़े करके इसराइल के देश में भेज दिया। जितनों ने उसे देखा वे सब आपस में कहने लगे, इसराइलियों के मिस्र देश से चले आने के समय से लेकर आज के दिन तक ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ और ना देखा गया, अतः इस पर सोचकर सम्मति करो और बताओ। उनकी दुष्टता और बुराई का कारण था कि वे परमेश्वर से दूर हो गए थे। जेम्स मोंटगोमरी बोइस कहते हैं, कोई भी मनुष्य अपने मन में बसने वाले परमेश्वर के विचार से अधिक ऊंचा नहीं उठता है। इसके विपरीत परमेश्वर के ऊंचे और भयावह चरित्र का बोध समाप्त होने पर सदा ही मनुष्य की नैतिक मान्यताएं समाप्त हो जाती हैं, वरन जिसे हम मानवता कहते हैं वही समाप्त हो जाती है। वे मनुष्य की भ्रष्ट अवस्था का प्रदर्शन करते थे और उन्हें परमेश्वर के उद्धार की आवश्यकता थी, अर्थात उन्हें एक उद्धारक की आवश्यकता थी। न्यायियों 3:15। फिर इसराइलियों ने यहोवा की दुहाई दी और उसने गेरा का पुत्र एहूद नाम एक बिन्यामीनी को उनका छुड़ाने वाला ठहराया। वह बैंहत्ता था। इसराइलियों ने उसी के हाथ से मोआब के राजा एग्लोन के पास कुछ भेंट भेजी। उन्हें परमेश्वर द्वारा उद्धार के लिए उद्धारकर्ता की आवश्यकता थी कि उन्हें परमेश्वर के क्रोध से बचाए। उन्हें परमेश्वर की दया की आवश्यकता थी। न्यायियों की पुस्तक का अंत यही है कि परमेश्वर के लोग वही करते थे जो उनकी दृष्टि में उचित था। पूर्ण दुष्टता और उन्हें मुक्ति की घोर आवश्यकता थी। कोई उन्हें परमेश्वर की दया दिखाए। न्यायियों 21:25। उन दिनों में इसराइलियों के कोई राजा नहीं था। जिसको जो ठीक जान पड़ता था वही वह करता था। रूत, विस्मयकारी करुणा का ईश्वरीय भेद। पृष्ठभूमि, यहोशू और न्यायियों के मध्य हमारे पास रूत की कहानी है जो मेरी मनपसंद पुस्तक है। विस्मयकारी दया का ईश्वरीय भेद। इसकी पृष्ठभूमि यह है, आपके पास दो स्थान हैं। रूत 1:1, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। बैतलहम अर्थात रोटी का घर। दूसरा समझौते का देश मोआब। बैतलहम में अकाल पड़ा तो एलीमेलेक अपने परिवार के साथ मोआब चला गया। मोआब एक श्रापित स्थान था। मोआब के उदय की कहानी उत्पत्ति 19 से संबंधित है। लूत की पुत्रियों ने अपने पिता से संतोत्पत्ति की थी। मुआबी बहिष्कृत लोग थे जो मूर्ति पूजक थे। मुआबी स्त्रियों ने इसराइल के पुरुषों को व्यभिचार करने के लिए ललचाया था, जिसके कारण 24,000 इसराइली मारे गए थे। यही मुआब है, समझौते का देश। इस कहानी के दो मुख्य चरित्र हैं, दुखी नाओमी एलीमेलेक की पत्नी रूत 1:19-21। अतः वे दोनों चल निकलीं और बैतलहम को पहुंची। उनके बैतलहम में पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगीं, क्या यह नाओमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? मुआब में नाओमी के पुत्रों ने मुआबी स्त्रियों से विवाह किया। वहां उसका पति और उसके पुत्र मर गए। नाओमी के पास इन दो पुत्र वधुओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। नाओमी के पोते भी नहीं थे कि परिवार का पोषण कर पाए, और उनकी मृत्यु के साथ परिवार का नाम भी समाप्त हो जाएगा। बैतलहम लौटकर नाओमी लोगों से कहती है कि उसे नाओमी नहीं मारा कहें, अर्थात कड़वा, क्योंकि परमेश्वर ने उस पर विनाश ढाया है। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि परमेश्वर आपके साथ बहुत कठोर रहा है और जीवन आपकी सहन शक्ति से बाहर है? इस दुखी स्त्री के साथ एक दीन युवती है जो नाओमी की सेवा में समर्पित है और नाओमी के परमेश्वर को मानती है। उसका नाम रूत है। रूत 1:16-17। रूत बोली, तो मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहां तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़ और किसी कारण से मैं तुझसे अलग हूं, तो यहोवा मुझसे वरन वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। बैतलहम में उनकी दो मुख्य आवश्यकताएं हैं। रूत 1:22। इस प्रकार नाओमी अपने मुआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मुआब के देश से आई थी। वे जौ कटने के समय आरब में बैतलहम पहुंची। उन्हें भोजन और एक परिवार की आवश्यकता थी। उनके लिए पालन पोषण करने वाला कोई नहीं था। रूत की पुस्तक के प्रथम अध्याय में हम परमेश्वर के दो रूप देखते हैं। नाओमी कहती है, रूत 1:21, मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही ने मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नाओमी कहती हो? हम देखते हैं कि परमेश्वर महान है। नाओमी परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहती है। वह जानती थी कि परमेश्वर सामर्थी है। रूत अध्याय 1 में हम देखते हैं कि परमेश्वर भला है। रूत की पुस्तक में आशा की पहली किरण 1:6 में है। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बैतलहम में भोजन की व्यवस्था की है। तब वह मुआब के देश में सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः हम जानते हैं कि नाओमी की कड़वाहट के पीछे परमेश्वर महान है, परमेश्वर भला है। ये प्रतिज्ञा पुस्तक के आरंभ ही से है। इसे ध्यान रखें। रूत अध्याय 1, परमेश्वर अपनी प्रभुता में दुखद त्रासदी को विस्मयकारी विजय का मंच तैयार करने के लिए उपयोग करता है। ऐसा भी समय आता है जब हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर है। इस कहानी में वरन हमारे जीवन में, जब हम अकाल ग्रस्त हों, जब हमें उस वस्तु की लालसा हो जो हमारे पास नहीं है, या जब सब कुछ परदेसी हो, संभवतः आप अपने को सांसारिक, मानसिक और आत्मिक रूप से नई जगह में पाएं। आपको समझ में ना आ रहा हो कि आप वहां कैसे पहुंचे, जबकि यह तो वास्तव में आपकी योजना के अनुसार नहीं था। जब मृत्यु सामने खड़ी हो और दर्द घटता ना हो, चाहे यह कुछ समय की बात हो या लंबे समय की आशा के अनुसार रहा हो या अकस्मात ही हुआ हो, जब निराशा छा जाए और हमें समझ में नहीं आ रहा हो कि वर्तमान परिस्थितियों में कैसे निर्वाह करें, हमें ऐसा प्रतीत हो कि बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, जब आप पूर्ण रूप से अकेले पड़ जाएं और आपके अपने भी आपके साथ सहानुभूति ना दर्शाते हों, ओह, मैं समझता हूं कि कितने लोग कष्टों से संघर्ष कर रहे हैं। लोगों में संतान प्राप्ति की लालसा है, परिवार बनाने की लालसा है, और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर ने आपको क्यों ये लालसा दी और पूरी नहीं की। हमारे दुख में जब हम रोते हैं, संघर्ष करते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग आपके संघर्षों को समझ नहीं पाते, वरन आपको नीचा देखते हैं। मैं निराशा को बड़ा स्थान नहीं देता, परंतु यह सब होता है। जब डॉक्टर हमें निदान सुनाता है या हम तलाक के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करते हैं या हमारी नौकरी चली जाती है या हमारा घर छिन जाता है, तो क्या परमेश्वर वास्तव में इन सब परिस्थितियों में हमारे साथ है? जब ऐसा प्रतीत हो कि परमेश्वर हमसे बहुत दूर है, तो उसकी प्रतिज्ञा स्मरण रखें। परमेश्वर हम पर अपनी विश्वास योग्यता प्रकट करेगा। रूत की पुस्तक के इस अध्याय के अंत में एक आशा है, रूत 1:22। इस प्रकार नौमी अपने मुआबिन बहू रूत के साथ लौटी, जो मुआब के देश से आई थी। वे जौ कटने के समय के आरंभ में बैतलहम पहुंची। नौमी को उसका बोध नहीं था। वह तो सोच रही थी कि सब समाप्त हो गया है, परंतु सच तो यह था कि उसके पास रूत में परमेश्वर की परिपूर्णता थी और परमेश्वर नौमी को अपने अनुग्रहकारी तथा अथाह आशीषें देने वाला था। भाइयों और बहनों, सदा स्मरण रखें, जब परमेश्वर आपको बहुत दूर प्रतीत हो, तो निश्चय ही वह अपने असीम विश्वास योग्यता की नींव आपके लिए तैयार कर रहा है। हमने वर्षों संतान प्राप्ति की प्रतीक्षा की और हम समझ नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर हमें संतान क्यों नहीं दे रहा है। हम समझ नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर हमें मध्य एशिया से 2 पुत्र और दक्षिण एशिया से 1 पुत्री देने का प्रबंध कर रहा है। मैं सोचता हूँ तो परमेश्वर की आशीषों को देखता हूँ। एक बच्ची को किसी ने कागज के डिब्बे में रखकर अनाथालय के द्वार पर छोड़ दिया था, और यह परमेश्वर का प्रबंध था कि हम उसे अपने घर में लाकर उसका लालन पालन करें और उसे सर्वोच्च पिता परमेश्वर के प्रेम की अनुभूति करवाएं। मुक्तिदाता। रूत अध्याय 2 में मुक्तिदाता के आगमन का मंच तैयार किया जा रहा है। यह कुटुंबी मुक्तिदाता का चित्रण है। एक दिन रूत गेहूं चुनने गई और वह बोअज के खेत में पहुंची। यहाँ परमेश्वर का हस्तक्षेप है कि वह बोअज को रूत के निकट लाता है और वह पूछता है, यह स्त्री कौन है? उसे पता चलता है कि वह गेहूं चुनने आई है, क्योंकि उसके घर में कोई पुरुष नहीं है। वह एक बहिष्कृत को स्वीकार करता है। रूत 2:11। बोअज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले ना जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। बोअज रूत से कहता है कि वह उसी के खेत से गेहूं चुने, क्योंकि वह वहां सुरक्षित रहेगी। वह दुर्बल को शरण देता है। रूत 2:12-13। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इसराइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तू शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूँ, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें कहकर मुझे शांति दी है। वह भूखे के साथ भोजन कराता है। वह रूत को अपने साथ भोजन के लिए बैठाता है और प्रेमालाप का आरंभ होता है। रूत 2:14। फिर खाने के समय बोअज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा, और अपना कौर सिरके में डुबा। तो वह लमने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको भुनी हुई बालें दी, और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। और वह आवश्यकता ग्रस्त पर अनुग्रह बरसाता है। रूत 2:15-18। जब वह बीनने को उठी, तब बोझ ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको पुलों के बीच बीच में भी बुनने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकालकर गिरा भी दिया करो और उसके बीनने के लिए छोड़ दो और उसे घुड़को मत। अतः वह सांझ तक खेत में बीनती रही, तब जो कुछ बीना था उसे फटका और वह कोई एपा भर जौ निकला। तब वह उसे उठाकर नगर में गई और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। वह इसे इतना अन्न दे देता है कि सप्ताहों का प्रबंध हो गया। नौमी आश्चर्यचकित होकर पूछती है, तो उसे पता चलता है कि वह बोअज है, उसका कुटुंबी, और वह कुटुंबी मुक्तिदाता की व्यवस्था से परिचित थी। अब वह कुटुंबी मुक्तिदाता कौन होता था? कुटुंबी मुक्तिदाता कुटुंब ही का एक सदस्य होता था, जो कि परिजन के मर जाने पर या असहाय होने पर उसके ऋण भुगतान करता था या उसके परिवार की सुधि लेता है। यह जानकर नौमी कड़वाहट से तुरंत आशीषों की ओर ध्यान देती है। क्या ऐसा हमारे साथ नहीं कि परमेश्वर हमारे दुख और कष्टों में हमारे लिए संतोष का प्रबंध कर रहा है? अब नौमी सक्रिय होती है और बोअज तथा रूत के संबंध का विचार करती है। परंतु बोअज से पूर्व एक और निकट कुटुंबी है। यहाँ हमें कुटुंबी मुक्तिदाता के मूल्य को समझना है। रूत 2:20। नौमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और न मरे हुओं में से अपनी करुणा हटाई है। फिर नौमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। अब एक कुटुंबी मुक्तिदाता के लिए 3 शर्तें पूरी करना आवश्यक था। उसके पास मुक्ति का अधिकार हो, उसके पास मुक्ति के संसाधन हो, उसमें मुक्ति दिलाने का संकल्प हो। अध्याय 4 में उस निकट कुटुंबी ने रूत और नौमी को मुक्त कराने का संकल्प नहीं किया, अतः बोअज एलीमेलेक की संपदा का ऋण चुकाकर रूत को अपना लेता है। रूत 4:9-10। तब बोअज ने वृद्ध लोगों और सब लोगों से कहा, तुम आज इस बात के साक्षी हो कि जो कुछ एलीमेलेक का और जो कुछ किलियोन और महलोन का था, वह सब मैं नौमी के हाथ से मोल लेता हूँ। फिर महलोन की स्त्री रूत मुआबिन को भी मैं अपनी पत्नी करने के लिए इस विचार से मोल लेता हूँ कि मरे हुए का नाम उसके निज भाग पर स्थिर करूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मरे हुए का नाम उसके भाइयों में से और उसके स्थान के फाटक से मिट जाए। तुम लोग आज साक्षी ठहरो। उनका विवाह होता है और पुत्र ओबेद उत्पन्न होता है। संकल्प: मैं मुक्ति के इतिहास में ओबेद को दर्शाना चाहता हूँ। रूत 4:13-22। तो अब बोअज ने रूत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई, और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके एक बेटा उत्पन्न हुआ। तब स्त्रियों ने नौमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंबी के बिना नहीं छोड़ा। इसराइल में इसका नाम बड़ा हो और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरा बुढ़ापे में पालने वाला हो, क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है, उसी का यह बेटा है। फिर नौमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी धाई का काम करने लगी, और उसकी पड़ोसिनों ने यह कहकर नौमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है लड़के का नाम ओबेद रखा। यिशै का पिता और दाऊद का दादा भी वही हुआ। पेरेस की यह वंशावली है, अर्थात पेरेस से हिस्रोन, हिस्रोन से राम, और राम से अमीनादाब, और अमीनादाब से नहशोन, और नहशोन से सलमोन, और सलमोन से बोअज, और बोअज से ओबेद, और ओबेद से यिशै, और यिशै से दाऊद उत्पन्न हुआ। देखिए, परमेश्वर अपने लोगों को मृत्यु से जीवन में लाता है। रूत की पुस्तक 3 मृत्यु से आरंभ होकर विवाह और संतानोत्पत्ति से अंत होती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में मृत्यु जीवन ले आती है। परमेश्वर अपने लोगों को श्राप से आशीष में ले आता है। अध्याय 1। नौमी सबसे अधिक श्रापित थी। वह विधवा थी, साथ ही उसकी संतान भी नहीं थी। परमेश्वर अपने लोगों को कड़वाहट से आनंद में ले आता है। जब स्त्रियां उसकी गोद में ओबेद को आशीष देती थीं, तब आप नौमी के चेहरे पर प्रसन्नता की कल्पना करें, मुझे कड़वाहट नहीं अब धन्य कहो। परमेश्वर अपने लोगों को खाली से भरपूरी में ले आता है। अध्याय 1 के अंत में नौमी स्त्रियों को अपने खाली हाथ दिखाती थी, मेरे पास कुछ नहीं है। अध्याय 4 के अंत में उसकी गोद में एक सुंदर बालक है और स्त्रियां कहती हैं, तेरे पास सब कुछ है। परमेश्वर अपने लोगों को निराशा से आशा में ले आता है। रूत की पुस्तक अतीत के दुखद अध्याय की तुलना में अविश्वसनीय भविष्य के साथ अंत होती है। यहाँ में स्मरण कराया गया है कि रूत अध्याय 4 में इस कहानी का अंत नहीं है। अब मत्ती अध्याय 1 में आ जाइए। मैं आपको एक बार फिर रूत और बोअज दिखाना चाहता हूँ। मत्ती 1:1-6, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए, यहूदा और तामार से फिरिस व जोरा उत्पन्न हुए, फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ, एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन, नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ, सलमोन और राहाब से बोअज उत्पन्न हुआ, बोअज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, और ओबेद से यिशै उत्पन्न हुआ, और यिशै से राजा दाऊद उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ। रूत की कहानी मुक्ति के इतिहास में यीशु की ओर संकेत करती है। वही एकमात्र था जो हमारे उद्धार की कीमत चुका सकता था। वही हमारे पुनरुद्धार का जामिन था। इफिसियों 1:7-8, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया। उपसंहार: इससे ये निष्कर्ष निकलता है, परमेश्वर अपने लोगों की सुधि लेने के निमित्त समर्पित है। रूत 1, वह सर्वशक्तिमान सबका प्रभु है। कभी न भूलें कि वह परम प्रधान है। वह हर एक बाधा पर प्रभुता करता है। अकाल, मृत्यु, भोजन, परिवार, प्रतीक्षा, तनाव, निसंतान, परमेश्वर सब पर प्रभुता रखता है। परमेश्वर सब कष्टों पर प्रभुता रखता है। हम समझते नहीं, हम सोचते हैं कि कैसे होगा, हमें आशा नहीं है, परंतु परमेश्वर प्रत्येक कष्ट जो हमारे हैं उनको भलाई में संसाधित करता है। जिससे कि हमें विश्वास हो कि हम समझ नहीं पाते तो भी हम उसकी दया पर निर्भर कर सकते हैं। हमारे लिए आनंद का उसका मार्ग आसान तो नहीं होता है, परंतु निश्चय ही संतोषदायक होता है। अतः रूत विस्मयकारी दया का परमेश्वर भेद है। पहला शमूएल 17, युद्ध में हमारा विजेता। इस कहानी के तीन पक्ष। पहला शमूएल 17, यह कहानी आप सब जानते हैं, दाऊद और गोलियत की कहानी। इस पर विचार करें कि यह हमारे कष्टों से कैसे संबंधित है। पहला शमूएल 17:1-14, अब पलिश्तियों ने युद्ध के लिए अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा देश के सोको में एक साथ होकर सोको और अजेका के बीच एपेस दम्मीम में डेरे डाले। शाऊल और इसराइली पुरुषों ने भी इकट्ठे होकर एला नाम तराई में डेरे डाले और युद्ध के लिए पलिश्तियों के विरुद्ध पाती बांधी। पलिश्ती तो एक ओर के पहाड़ पर और इसराइली दूसरी ओर के पहाड़ पर और इसराइली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। तब पलिश्तियों की छावनी में से एक वीर गोलियत नामक निकला, जो गत नगर का था। उसकी लंबाई 6 हाथ 1 बित्ता थी। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का झिलम पहने हुए था, जिसका तौल 5,000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उससे कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। वह खड़ा होकर इसराइली पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इसराइली पातियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इसराइलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। दाऊद यहूदा के बैतलहम के उस एपराती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था, और उसके 8 पुत्र थे, और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे, और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलियाब, दूसरे का अबीनादाब और तीसरे का शम्मा था। सबसे छोटा दाऊद था, और 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे। इसके 3 पक्ष हैं। अमेद चरित्र। पहला शमूएल 17:5-7 में गोलियत का चरित्र चित्रण है। उसके सिर पर पीतल का टोप था और वह एक पत्थर का जिलम पहने हुए था, जिसका तौल 5,000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उससे कंधों के बीच बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे की डोंगी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था। और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। देखिए, यहाँ एक असाध्य चुनौती है। पहला शमूएल 17:8-11 में लिखा है, वह खड़ा होकर इसराइली पातियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों पाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं हूँ और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इसराइली पातियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़ें। उस पलिश्ती की इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इसराइलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। एक असंभाव्य विजेता। पहला शमूएल 17:12-15 में दाऊद की पहली झलक है। दाऊद यहूदा के बैतलहम के उस एपराती पुरुष का पुत्र था जिसका नाम यिशै था, और उसके 8 पुत्र थे, और वह पुरुष शाऊल के दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यिशै के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे, और उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे ये थे, अर्थात ज्येष्ठ का नाम एलियाब, दूसरे का अमीनादाब और तीसरे का शम्मा था। सबसे छोटा दाऊद था, और 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर गए थे, और दाऊद बैतलहम में अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने को शाऊल के पास से आया जाया करता था। इस विजेता पर ध्यान दें, वह परमेश्वर की महिमा के प्रति मनोवेग से पूर्ण था। पहला शमूएल 17:26, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इसराइलियों के नाम धराई दूर करेगा उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतरा रहित पलिश्ती क्या है कि जीवते परमेश्वर की सेना को ललकारे? अतः हम देखते हैं कि वह परमेश्वर की महिमा के प्रति मनोवेग से पूर्ण था। वह परमेश्वर के सामर्थ्य में भरोसा रखता था। पहला शमूएल 17:37, फिर दाऊद ने कहा, यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजे से बचाया है, वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से भी बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा, जा, यहोवा तेरे साथ रहे। गोलियत और दाऊद की मुठभेड़ का वृत्तांत। पहला शमूएल 17:41-51, पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली छलकती थी और वह सुंदर था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इसराइली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा, तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इसराइल में एक परमेश्वर है। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयमत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। यूं दाऊद ने पलिश्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर उसी तलवार से काट डाला। यह देखकर कि हमारा वीर मर गया है, पलिश्ती भाग गए, तो यह है एक असंभाव्य विजेता जो परमेश्वर की महिमा के प्रति मनोवेग से पूर्ण था और परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा रखता था। इस कहानी के तीन स्तर। यदि हम सतर्कता से ना पढ़ें तो हम केवल इसका मूल आधार देखकर ही इसे छोड़ देंगे, परंतु मैं आपके सामने इसके तीन स्तर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। पहला है व्यक्तित्व इतिहास। जैसा हमने देखा है, इस कहानी में गोलियत है, एक चुनौती है दैत्य को हराना। दूसरा, विजेता भावी राजा दाऊद। इससे पूर्व की अध्याय 17 में दाऊद का वृत्तांत आए, अध्याय 16 में 12 से 13 में शमूएल राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक करता है। तब वो उसे बुलाकर भीतर ले आया। उसके तो लाली झलकती थी और उसकी आंखें सुंदर और उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया। वैदिक इतिहास के साथ ही राष्ट्र का इतिहास भी है। दाऊद और गोलियत की कहानी वास्तव में इसराइल और उसके बैरी पलिश्ती देश की है। अतः नायक, पड़ोसी देश, चुनौती, परमेश्वर की प्रजा की मुक्ति और विजेता दाऊद, परमेश्वर द्वारा चुना हुआ भावी चरवाहा राजा। अब इसे मुक्ति के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखें। इस युद्ध में कहीं अधिक भयानक बैरी शैतान है और बहुत बड़ी चुनौती पाप का अंत और एक विजेता प्रभु येशु उद्धारक राजा। इस कहानी का गौण उद्देश्य यह है कि परमेश्वर एक असंभाव्य विजेता उभारता है जो उसी प्रजा को बैरी से बचाने के लिए यश्य के वंश से है। इस कहानी की तीन शिक्षाएं। इसका कष्टों से क्या संबंध? हमें परमेश्वर की महिमा के प्रति मनोवेग से पूर्ण होना है। इस कहानी की शिक्षा यह नहीं है कि दानवों के सामने निडर रहें, परंतु यह कि हमारी हर एक समस्या में परमेश्वर की महिमा के प्रति मनोवेग से वंचित ना हों। हर एक समस्या के निवारण से बढ़कर परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाने की लालसा रखें, चाहे समस्या का समाधान ना हो। अतः हमारा उद्देश्य हमारी सुरक्षा, सुविधा और योजना पूर्ति की अपेक्षा परमेश्वर का महिमान मन हो। हमारी समस्याओं में हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करे। परमेश्वर के सामर्थ्य में विश्वास रखें। युद्ध तो वास्तव में जीता जा चुका है। प्रभु ने ये युद्ध क्रूस पर जीत लिया है। कुलुसियों 2:13-15 कहता है, उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे उसके साथ जलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसको क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। शैतान हराया जा चुका है, अतः पाप और कष्टों में हम युद्ध नहीं करते हैं, हम तो विजय के आधार पर लड़ते हैं। यही तो एक महान अंतर है। पहला यूहन्ना 4:4 कहता है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। यदि यह तथ्य आपके चित्त में नहीं उतरा है तो आपको विजय का अनुभव नहीं होगा। आप हारे हुए और उलझन में पड़े हुए होंगे। हम विश्वासी विजयी हैं, हम अपनी विजय को आगे बढ़ा रहे हैं। यूहन्ना कहता है कि जो हमें अंतर्वास करता है वह संसार के सरदार से महान है। यह हमें पहला यूहन्ना 4:4 में मिलता है। अतः हमारे प्रत्येक पाप एवं परीक्षा और संघर्ष में हम प्रभु यीशु को निहारें, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। शमूएल, राजा, इतिहास, पाप और कष्ट। इसराइल के राजाओं में गंभीर पाप। मैं पहला और दूसरा शमूएल, पहला दूसरा राजा, पहला दूसरा इतिहास को पाप और कष्ट के शीर्षक के अधीन रखना चाहता हूँ। इसराइल के राजाओं में गंभीर पाप आ गया था। दुर्भाग्य से दाऊद का बतशेबा के साथ व्यभिचार और उसके पति उरिया की हत्या। दूसरा शमूएल 11:2-5। सांझ के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था और छत पर से उसको एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई देख पड़ी। जब दाऊद ने दूत भेजकर उस स्त्री को पुछवाया तब किसी ने कहा, क्या यह एलियाम की बेटी और हित्ती उरिया की पत्नी बतशेबा नहीं है? तब दाऊद ने दूत भेजकर उसे बुलवा लिया और वह दाऊद के पास आई और वह उसके साथ सोया। वह तो ऋतु से शुद्ध हो गई थी। तब वह अपने घर लौट गई और वह स्त्री गर्भवती हुई। तब दाऊद के पास कहला भेजा कि मुझे गर्भ है। पाप परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। दूसरा शमूएल 11:26-27। जब उरिया की स्त्री ने सुना कि मेरा पति मर गया तब वह अपने पति के लिए रोने पीटने लगी, और जब उसके विलाप के दिन बीत गए तब दाऊद ने उसे बुलवाकर अपने घर में रख लिया और वह उसकी पत्नी हो गई और उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। परंतु उस काम से जो दाऊद ने किया था यहोवा क्रोधित हुआ। देखिए पाप कैसे चतुराई से आता है और महान हानि पहुंचाता है, वरन पूर्ण नियंत्रण कर लेता है और कष्टदायी विनाश लाता है। परमेश्वर के मन के अनुसार राजा दाऊद में पाप कैसे आया? पाप की त्रासदी परमेश्वर को चुनौती है। भजन 51:3-5 में दाऊद कहता है, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। पाप परमेश्वर को चुनौती और मनुष्य की कुंठा है। इसराइल के इतिहास में पाप का राजा था। इसराइल की प्रजा में कष्टों की गाथा। दाऊद, सुलेमान और उसके बाद के हर एक राजा के युग में इसराइल के कष्टों की गाथा पढ़ें। पहला राजा 11:4-8। अतः जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन पराये देवताओं की ओर बहका दिया और उसका मन अपने पिता दाऊद के नहीं अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सीदोनियों की अश्तोरेत नामक देवी और अम्मोनियों के मिलकोम नामक घृणित देवता के पीछे चला। इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से न चला। उन दिनों सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मुआबियों के कमोश नामक घृणित देवता के लिए और अम्मोनियों के मोलेक नामक घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया, और अपनी सब विजातीय स्त्रियों के लिए भी जो अपने अपने देवताओं को धूप जलाती और बलिदान करती थीं उसने ऐसा ही किया। यहाँ वाचा के क्रमिक इतिहास को देखें। पहला राजा 1:11 में शाऊल, दाऊद और सुलेमान का राज्य। सुलेमान के बाद इसराइल का विभाजन हो गया था। उत्तरी राज्य इसराइल और दक्षिणी राज्य यहूदा, और अंततः उत्तरी राज्य मिट गया और दक्षिणी राज्य कुछ समय बाद बंधुआई में चला गया। वाचा के प्रति उनके निष्ठा को देखें। इसराइल के 19 में से एक राजा ने भी वाचा का मान नहीं रखा, और यहूदा के 20 राजाओं में से केवल 8 ही परमेश्वर के मार्गों में चले। परमेश्वर से विद्रोह के कारण उनकी प्रजा को कष्ट भोगना पड़ा। ये वाचा का अनर्थ था। विभाजन, नरसंहार, अशूरियों द्वारा उत्तरी राज्य का ध्वंस किया जाना और अंत में बेबीलोन राज्य द्वारा यरूशलम का विनाश। पाप चतुराई से आता है, गहरी चोट पहुंचाता है, शीघ्र पकड़ करता है और कष्टदायक विनाश लाता है। पाप सदा ही कष्ट लाता है। परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम देख पाएं कि पाप सदैव कष्ट लाता है। एज़रा, नहेमिया, एस्तर। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। कथा वस्तु, परमेश्वर दयावान है। एज़रा, नहेमिया, एस्तर। परमेश्वर अपने लोगों की रक्षा करता है। इन पुस्तकों में परमेश्वर द्वारा उसके लोगों की रक्षा और बंधुआई के बाद यरूशलम में पुनर्वास का वृत्तांत है। एज़रा 1:1-4 में लिखा है, फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुसरू का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यर्मिया के मुंह से निकला था वह पूरा हो जाए। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया, फारस का राजा कुसरू यूं कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसने मुझे आज्ञा दी कि यहूदा के यरूशलम में मेरा एक भवन बनवा। उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे और वह यहूदा के यरूशलम को जाकर इसराइल के परमेश्वर यहोवा का भवन बनाए। जो यरूशलम में है वही परमेश्वर है। जो कोई किसी स्थान में रह गया हो, जहां वह रहता हो, उस स्थान के मनुष्य चांदी, सोना, धन और पशु देकर उसकी सहायता करें और इससे अधिक परमेश्वर के यरूशलम के भवन के लिए अपनी अपनी इच्छा से भी भेंट चढ़ाएं। यहूदियों का यरूशलम लौटना, एज़रा 2:1। जिनको बेबीलोन का राजा नबूकदनेस्सर बेबीलोन को बंदी बनाकर ले गया था, उनमें से प्रांत के जो लोग बंधुआई से छूटकर यरूशलम और यहूदा को अपने अपने नगर में लौटे वे ये हैं। लौटने के बाद मंदिर का पुनः निर्माण, एज़रा 6:14-16। तब यहूदी पुरनिये हगई नबी और इद्दो के पोते जकरिया के नबुवत करने से मंदिर को बनाते रहे और सफल भी हुए। उन्होंने इसराइल के परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार और फारस के राजा कुसरू, दारा और अत्रशत्र की आज्ञाओं के अनुसार बनाते बनाते उसे पूरा कर लिया। इस प्रकार वह भवन राजा दारा के राज्य के 6वें वर्ष में अदार महीने के 3रे दिन को बनकर समाप्त हुआ। इसराइली अर्थात याजक, लेविय और अन्य जितने बंधुआई से आए थे, उन्होंने परमेश्वर के उस भवन की प्रतिष्ठा उत्सव के साथ की। तदोपरांत शहरपनाह का पुनः निर्माण, यह नहेमिया का वृत्तांत है। 6:15-16। एलूल महीने के 25वें दिन को अर्थात 52 दिन के भीतर शहरपनाह बन गई। जब हमारे सब शत्रुओं ने यह सुना तब हमारे चारों ओर रहने वाले सब अन्य जाति डर गए और बहुत लज्जित हुए, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि यह काम हमारे परमेश्वर की ओर से हुआ। उद्देश्य, इन वृत्तांतों का उद्देश्य है कि हम देखें परमेश्वर अंततः अपने लोगों को अपनी महिमा के निमित्त सुरक्षित रखता है। निम्न संदर्भों में आप देखेंगे कि परमेश्वर अन्य जाति राजाओं के द्वारा अपने लोगों की रक्षा करता है। 2 इतिहास 36:15-23। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वह अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था। परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। तब उसने उन पर कस्तियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनके पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पके बाल वाले, किसी पर भी कोमलता ना की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया। क्या छोटे क्या बड़े, परमेश्वर के भवन के सब पात्र और यहोवा के भवन और राजा और उसके हाकिमों के खजाने, इन सबों को वह बेबीलोन में ले गया। कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया और उसमें का सारा बहुमूल्य सामान नष्ट कर दिया। जो तलवार से बच गए उन्हें वह बेबीलोन को ले गया और फारस के राज्य के प्रबल होने तक वे उसके और उसके बेटों पोतों के अधीन रहे। यह सब इसलिए हुआ कि यहोवा का जो वचन यर्मिया के मुंह से निकला था वह पूरा हो, कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे। इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। फारस के राजा कुसरू के पहले वर्ष में यहोवा ने उसके मन को उभारा कि जो वचन यर्मिया के मुंह से निकला था वह पूरा हो। इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में यह प्रचार करवाया और इस आशय की चिट्ठियां लिखवाईं। फारस का राजा कुसरू कहता है, स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर का राज्य मुझे दिया है और उसी ने मुझे आज्ञा दी है कि यरूशलम जो यहूदा में है उसमें मेरा एक भवन बनवा। इसलिए हे उसकी प्रजा के सब लोगों, तुम में से जो कोई चाहे कि उसका परमेश्वर यहोवा उसके लिए साथ रहे, तो वह वहां रवाना हो जाए। नहमिया 2:8 और सरकारी जंगल के रखवाले आसाप के लिए भी इस आशय की चिट्ठी मुझे दी जाए, ताकि वह मुझे भवन से लगे हुए राजगढ़ की कड़ियों के लिए और शहरपना के और उस घर के लिए जिसमें मैं जाकर रहूंगा लकड़ी दे। मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर थी, इसलिए राजा ने यह विनती स्वीकार कर ली। नहमिया 2:18 फिर मैंने उनको बतलाया कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसी हुई और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थीं। तब उन्होंने कहा, आओ हम कमर बांधकर बनाने लगें। और उन्होंने इस भले काम को करने के लिए हियाव बांध लिया।